इंडिया रिपोर्ट में सबसे पहले चर्चा यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे भारतीयों की, जिन्हें निकालने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि अब तक 18,000 लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, इनमें से ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी।
द टोटल नंबर ऑफ इंडियंस हु हैव लेफ्ट यूक्रेन सिंस आवर एडवाइजरीज वर इशूड, we estimate is now near 18,000. The pace of Operation Ganga continues to accelerate. During the last 24 hours, 15 flights landed in India. As you see, I think it was 3, 6 and then 9. So 15 flights in one day, bringing back more than 3,000 Indians. So with this, it takes the total number of flights under Operation Ganga to 30, if I remember correctly. And we have brought back around 6,400 Indian citizens.
सैकड़ों छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सुमी शहर में ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 1,000 तक बताई जा रही है। इनमें से कई छात्रों ने वीडियो के जरिए अपनी बात, अपने दर्द साझा किए हैं। यूक्रेन संकट को लेकर भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए भारत बातचीत पर जोर दे रहा है। गुरुवार को क्वाड नेताओं की बैठक में भी भारत ने कूटनीति के जरिए यूक्रेन संकट का हल निकालने की बात कही। इस वर्चुअल बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हुए। यूक्रेन मुद्दे पर भारत के राजनीतिक दलों ने भी सरकार का साथ दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वर्तमान हालात को लेकर चर्चा की। अरिंदम बागची इस बैठक को लेकर बताते हैं।
गोपनीय तो नहीं, पर इसमें प्रिविलेजेस की बात होती है, उसमें क्या हुआ मैं इसमें बारे में नहीं कह सकता हूँ, पर उन्होंने जैसे उसके बाद कहा, मीटिंग के बैठक के बाद कहा कि पूरे देश एकत्रित है इसी इश्यू पे, एक ही भावना से चाहते हैं कि सब लोग हमारे स्टूडेंट्स को वहां से आ जाएं सही सलामत जितनी जल्दी हो सके। बस यही कॉमन पोजीशन आई थिंक उन्होंने कहा है, और इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा।
यूक्रेन संकट के बाद चर्चा कोरोना संकट की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना आने वाले मामलों की संख्या 10,000 से नीचे रह रही है। कोरोना के ताजा हालात के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव लव अग्रवाल कहते हैं
कि ओवरऑल केस मैनेजमेंट में काफी पॉजिटिव रिजल्ट देश ने नोट किए हैं, और इसी के साथ ही जब 11,302 केसेस एवरेज बेसिस पर देश में नोट किए गए हैं और हम विश्व के केसेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ओनली 0.7% ऑफ द ग्लोबल केसेस अभी इंडिया में आ रहे हैं। जैसे कि हमने देश में जो डेथ रिकनसाइल्ड स्टेट के लेवल पर की गई उस डिटेल्स को हटाया तो हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज 2 से 8 फरवरी वाले हफ्ते में जहां देश में ऑन एन एवरेज 615 डेथ रिपोर्ट की गई थी उसमें भी एक शार्प डिक्रीज नोट किया जा रहा है, और पिछले हफ्ते में 144 डेथ ऑन एन एवरेज देश में कोविड से रिलेटेड नोट की गई जो कि 76.6% ऑफ द पीक विच इंडिया हैज सीन उसमें नोट किया गया है।
कोरोना से निपटने में टीकाकरण को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि टीकाकरण के चलते संक्रमण और मौत के मामलों में काफी कमी आई है।
ट्रैकिंग वैक्सीन इफेक्टिवनेस, इंडिया इज द सेकंड कंट्री व्हिच हैज अ वैक्सीन ट्रैकर फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स नाउ व्हिच इज इन पब्लिक डोमेन ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेबसाइट, नेशनल वैक्सीन ट्रैकर एंड दैट हैज बीन देयर, एंड हाई वैक्सीनेशन has caused reduced morbidity and mortality and we have studies to show the same.
और अब चर्चा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की, जो इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। गुरुवार को विशेष अदालत ने हिरासत की अवधि को 7 मार्च तक बढ़ा दिया। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी संपत्तियों को सस्ते दामों पर खरीदने का आरोप है। भाजपा नवाब मलिक को पद से हटाए जाने की मांग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरते हुए कहते हैं,
कोई मंत्री जेल के अंदर है फिर भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, ये अप्रत्याशित है। वो जेल में गए हैं कोई छोटे मोटे आरोप में नहीं, तो सीधे दाऊद के परिवार के साथ साठगांठ का आरोप है, दाऊद के परिवार से व्यवहार का आरोप है। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, ऐसे आरोपी से जमीन खरीदी और जो जमीन किसी तीसरे की, उनको एक पैसा नहीं मिला है। नवाब मलिक, इनका इस्तीफा सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? ये दाऊद समर्पित सरकार है, ये दाऊद शरण सरकार है, ये सरकार दाऊद के साथ जो रिश्तेदारी रखते हैं उनको बचाने के लिए एक आ रही है। इसीलिए हमने इसका विरोध शुरू किया है और हमारी मांग है कि तुरंत नवाब मलिक, इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए।
सरकार और एनसीपी ने नवाब मलिक का बचाव किया है, उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। एनसीपी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इसके नेताओं के संबंध आतंकियों से बताए हैं। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भाजपा नेता गिरीश महाजन पर दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों के साथ डिनर करने का आरोप लगाया है। आतंकी और नेताओं का गठजोड़ सिर्फ महाराष्ट्र में ही मुद्दा नहीं है, बल्कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने अपनी विरोधी पार्टी समाजवादी पर आतंकियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया है। वैसे उत्तर प्रदेश में अब आखिरी चरण का चुनाव बाकी रह गया है। गुरुवार को छठवें चरण के तहत 57 सीटों पर हुए मतदान में लगभग 56% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। अब सातवें और अंतिम चरण के तहत 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। ये सभी सीटें बनारस और उसके आसपास की हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता बनारस में ही मौजूद रहेंगे। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।